بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 5 ہے. آج ہم آپ کے لیے عمران سیریز کا ناول وائٹ بلڈ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس ناول کے مصنف ظہیر احمد ہیں. یہ ناول آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 03212138225, 03002919600, یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org, www.qurtaba.org. اب سنتے ہیں پارٹ نمبر 5. اگر یہ قتل سلیم نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ تنویر نے کہا. اس کے لہجے میں بھی حیرت کا عنصر تھا. قاتل جو بھی ہے بہت چالاک ہے اور ایک ایک کر کے اپنے راستے میں آنے والے سب لوگوں کو ہٹاتا جا رہا ہے. عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا. اپنے راستے سے کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا. سلیم شاید قاتل کے بارے میں جانتا تھا. قاتل کو اس سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا, اس لیے اس نے دوہرا کھیل کھیلتے ہوئے نہ صرف ابو الحسن کو ٹھکانے لگا دیا بلکہ اس کے قتل کے تمام ثبوت سلیم کے کمرے میں جمع کر دیے تاکہ یہی سمجھا جائے کہ ابو الحسن کے قتل میں سلیم کا ہی ہاتھ ہے, عمران نے کہا. لیکن وہ چالاک اور ذہین قاتل آخر ہے کون اور وہ چاہتا کیا ہے؟ کبھی اس کا نشانہ نواب شجاعت علی خان ہوتا ہے اور کبھی مانڈو, اور اب اس نے ابو الحسن کو بھی قتل کر دیا ہے اور اس کے قتل میں سلیم کو بھی پھنسا دیا ہے, جولیا نے کہا. وہ جو کوئی بھی ہے جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا. تم یہ بتاؤ کہ زرقا نے تمہیں جو نوٹ بک دی تھی وہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا. وہ تو گیسٹ روم کی الماری میں پڑی ہے. کیوں؟ جولیا نے کہا. میں ایک نظر اس نوٹ بک کو دیکھنا چاہتا ہوں. تم زرقا کو لے کر میرے ساتھ گیسٹ روم میں چلو اور تم دونوں یہاں کام کرو. مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس کمرے سے قاتل کا کوئی نہ کوئی کلو ضرور مل جائے گا. عمران نے پہلے جولیا اور پھر صفدر اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور جولیا زرقا کو اٹھائے عمران کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی. اسی لمحے سامنے گیٹ کھلا اور پولیس کی دو موبائل گاڑیاں اندر داخل ہوئیں. تم اسے لے کر جاؤ, میں انسپیکٹر سے مل کر آتا ہوں, عمران نے کہا. تو جولیا زرقا کو اٹھائے آگے بڑھ گئی اور عمران برامدے میں آ گیا. کچھ ہی دیر میں پولیس گاڑیوں سے انسپیکٹر شفیق اور انسپیکٹر نکل کر باہر آ گئے. آپ ابھی تک یہی ہیں عمران صاحب؟ انسپیکٹر شفیق نے آگے بڑھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا. ہاں ہاں, کیوں؟ مجھے کہیں اور ہونا چاہیے تھا کیا؟ عمران نے مسکرا کر اپنے مخصوص انداز میں کہا. نہیں, لیکن یہ آپ کا حلیہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی ملبے کے ڈھیر سے نکل کر آ رہے ہوں, انسپیکٹر شفیق نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہاں ایسا ہی ہے. تم یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تمہیں جو خنجر دیا گیا تھا اس پر سے تم نے اب تک فنگر پرنٹس حاصل کیے ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا. جی ہاں, میں نے خنجر فورینسک لیبورٹری بھجوا دیا تھا لیکن ابھی تک وہاں سے مجھے رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے. جیسے ہی رپورٹ موصول ہوگی میں لے کر آپ کو پہنچا دوں گا, انسپیکٹر شفیق نے کہا. اوکے, کیا تم فورینسک لیبورٹری کے ایکسپرٹس کو یہاں بلا سکتے ہو؟ عمران نے کہا. جی ہاں کیوں نہیں, انسپیکٹر شفیق نے کہا. تو پھر ان ایکسپرٹس کو فوراً یہاں بلا لو. میں چاہتا ہوں کہ ایکسپرٹس ابو الحسن کی لاش کی مکمل چیکنگ کریں اور اس جگہ کو بھی چیک کریں جہاں ابو الحسن کو ہلاک کیا گیا ہے, عمران نے کہا. ٹھیک ہے ارشد, فوراً فورینسک ایکسپرٹس کو کال کرو اور انہیں یہاں آنے کا کہو, انسپیکٹر شفیق نے کہا. تو سب انسپیکٹر ارشد نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جیب سے اپنا سیل فون نکال کر ایک طرف بڑھ گیا. مجھے بتایا گیا ہے کہ محل کی چھت پر نواب شجاعت علی خان کے بھانجے کو کسی نے انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا ہے. کس نے کیا ہے اسے قتل؟ انسپیکٹر شفیق نے کہا. قاتل کے بارے میں کلوز حاصل کرنے کے لیے تو میں نے تمہیں فورینسک لیبورٹری کے ایکسپرٹس کو یہاں بلانے کے لیے کہا ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ قاتل کون ہے تو پھر میں تمہیں ایکسپرٹس کو یہاں بلانے کے لیے کیوں کہتا؟ عمران نے منہ بنا کر کہا. اوہ سوری, واقعی مجھے خیال نہیں رہا, انسپیکٹر شفیق نے کھسیانے انداز میں دانت نکالتے ہوئے کہا. کیا میں چھت پر چھوٹے نواب کی لاش دیکھنے جاؤں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انسپیکٹر شفیق نے پوچھا. ہاں جاؤ, اور ہاں ارشد سے کہنا کہ وہ فورینسک لیبورٹری کے ایکسپرٹس کو सलीम के कमरे में ले जाए। अबुल हसन को उसी कमरे में कत्ल किया गया है, इमरान ने कहा। उस पागल के कमरे में, इंस्पेक्टर शफीक ने चौंक कर कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। क्या इस कत्ल में सलीम का हाथ है, इंस्पेक्टर शफीक ने पूछा। हो भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सलीम को जानबूझकर इस कत्ल में फंसाने की साजिश की है। लेकिन बहरहाल, फॉरेंसिक लेबोरेटरी वाले जब तक कमरे से तमाम क्लूज हासिल नहीं कर लेते, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, इमरान ने कहा। तो इंस्पेक्टर शफीक ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा और फिर वो मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। इमरान गेस्ट रूम में दाखिल हुआ तो उसने जूलिया को पागलों के अंदाज में अलमारी से हर चीज निकाल निकाल कर बाहर फेंकते देखा। उसने जरका को बेड पर लिटा दिया था, जो बदस्तूर गहरी नींद में थी। ये तुम क्या कर रही हो, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जरका की नोटबुक तलाश कर रही हूँ, मैंने इस अलमारी में ही रखी थी, जूलिया ने परेशानी के आलम में कहा। तो क्या अब नोटबुक अलमारी में नहीं है, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं मिल रही है, जूलिया ने कहा। इसका मतलब है कि जिन अफराद ने हम पर हमला किया था वो यहाँ हम पर सिर्फ हमला करने ही नहीं बल्कि उस नोटबुक को भी हासिल करने के लिए आए थे, इमरान ने कहा। क्या मतलब, जूलिया ने चौंक कर कहा। नोटबुक अगर तुम्हारी अलमारी में नहीं है तो इसका यही मतलब हो सकता है कि उसे या तो हम पर हमला करने वाले ले गए हैं या उन हमलावरों के जाने के बाद यहाँ कोई और आया था और उसने अलमारी से नोटबुक निकाल ली थी, इमरान ने कहा। लेकिन किसी का इस नन्ही बच्ची की नोटबुक से क्या वास्ता हो सकता है, जूलिया ने कहा। कुछ ना कुछ तो है, इस नोटबुक में जरूर कुछ ऐसा है जो या कातिल या फिर नवाब शुजात अली खान के खिलाफ साजिश करने वाले के लिए खतरे का बाइस बन सकता है, इसलिए उसने नोटबुक यहाँ से गायब कर दी है ताकि हम अंधेरे में ही टामकटू या मारते रह जाएं और हमें उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। ये कातिल तो वाकई बेहद चालाक है, अपने खिलाफ अव्वल तो कोई सबूत छोड़ता नहीं और अगर गलती से कोई सबूत उसके पीछे रह जाए तो वो उसे खत्म करने के दरपे हो जाता है, जूलिया ने कहा। क्या तुमने जरका की नोटबुक देखी थी, इमरान ने पूछा। हाँ, मैंने कॉपी को सरसरी तौर पर देखा था, उसमें अजीब व गरीब और आड़ी तिरछे लकीरें लगी हुई थी और कुछ बिगड़े हुए अल्फाज भी थे जो कम अज कम मुझे समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं जरका से उसकी नोटबुक मांग कर ले आई थी ताकि उसे इत्मीनान और पूरी तवज्जो से देख सकूं, जूलिया ने कहा। इस नोटबुक में कुछ न कुछ तो जरूर है जिसे कातिल हमें देखने से रोकना चाहता है, इमरान ने होंठ काटते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में क्या हो सकता है उस नोटबुक में, जूलिया ने पूछा। हो सकता है उसमें कातिल का खाका हो या फिर जरका ने ऐसी कोई बात तहरीर की हो जो हमें साजिश करने वाले कातिल तक पहुंचा सकती हो, इमरान ने कहा। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जरका जो एक मासूम बच्ची है वो कातिल या साजिश करने वाले के बारे में कुछ ना कुछ जानती है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। शायद, इमरान ने एक तवील सांस लेकर कहा। लेकिन अब हम इस नोटबुक को कहाँ तलाश करें, इसे तो यहाँ से उड़ा लिया गया है, जूलिया ने कहा। उस नोटबुक को तलाश करने के लिए अब मुझे एक और काम करना पड़ेगा, इमरान ने सोचते हुए अंदाज में कहा। क्या, जूलिया ने पूछा तो इमरान उसे अपनी प्लानिंग बताने लगा जिसे सुनकर जूलिया की आंखों में गैर मामूली चमक उभर आई थी, जिससे उसे यकीन भी हो गया था कि इमरान जो काम करना चाहता हो उससे उन्हें इस मामले में आगे बढ़ने में जरूर मदद मिलेगी। इंस्पेक्टर शफीक ने फॉरेंसिक लेबोरेटरी के एक्सपर्ट के साथ मिलकर लाश और सलीम के कमरे से तमाम क्लूज हासिल कर लिए थे। सलीम के कमरे से मिलने वाले तमाम क्लूज चीख चीख कर इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अबुल हसन को कत्ल करने वाला सलीम ही है। जब से वो पागल हुआ था तब से वो अबुल हसन को ना सिर्फ खूनी नजरों से घूरता रहता था बल्कि उसने अबुल हसन पर हमला भी किया था। सलीम के कमरे से मिलने वाले सबूत और खून आलूद छुरे को देखकर नवाब शुजात अली खान और उसकी बेटी नूरबानो ने भी चीख चीख कर सलीम को अबुल हसन का कातिल करार दे दिया था। उनका कहना था कि इमरान का ख्याल दुरुस्त है, सलीम पागल नहीं है, वो सिर्फ पागल बनने की अदाकारी कर रहा है और उसी ने अबुल हसन को हलाक किया है। उन्हें सलीम पर इस कदर गुस्सा था कि उन्होंने इंस्पेक्टर शफीक को फौरी तौर पर उसे वहां से गिरफ्तार करके ले जाने का हुक्म दे दिया था। नवाब शुजात अली खान और इंस्पेक्टर शफीक के मामलात में इमरान और उसके साथियों ने कोई मदाखलत नहीं की थी, इमरान ने उन्हें खामोश रहने का कह दिया था। महल की फजा खासी सोगवार हो गई थी, अबुल हसन की नागहानी मौत ने वहां मौजूद तमाम अफराद को हिलाकर रख दिया था। उसकी मौत का गम जहां नवाब शुजात अली खान को और उसकी बेटी नूरबानो को था, اتنا ہی محل کے ملازمین بھی افسوس زدہ تھے، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق ابو الحسن ان سب کا بے حد خیال رکھتا تھا اور ان کی ضروریات بھی پوری کرتا تھا۔ نواب شجاعت علی خان نور بانو ریڈو گماٹا اور راٹھور کے ساتھ عمران اور اس کے ساتھی لون میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو الحسن کی ہلاکت سے وہ سب چونکہ انتہائی غم زدہ تھے، اس لیے ان میں سے کسی نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان میں سے کسی کا ناشتہ کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ لون میں آنے کے بعد نواب شجاعت علی خان نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ناشتہ کرنے کے لیے زور دیا تھا، لیکن عمران اور اس کے ساتھی اس بوجھل فضا میں بھلا کیسے ناشتہ کر سکتے تھے؟ ناشتہ نہ صحیح، کم از کم چائے تو پی لیں آپ، ہماری وجہ سے آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ خاموش بیٹھی نور بانو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر آپ سب پیئیں گے تو ہم بھی پی لیں گے، عمران نے کہا۔ تو نواب شجاعت علی خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس وقت واقعی مجھے چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی ہے، ہم سب مل کر چائے پی لیتے ہیں، نواب شجاعت علی خان نے کہا، اور پھر اس نے گماٹا اور ریڈو کو حکم دیا کہ وہ جا کر ان سب کے لیے چائے لے آئیں۔ ریڈو اور گماٹا سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے نہا دھو کر لباس بدل لیے تھے، اب وہ فریش دکھائی دے رہے تھے۔ جولیا نے اپنے ساتھ زرقہ کو بٹھا رکھا تھا جو بے حد غمگین اور اداس دکھائی دے رہی تھی۔ اسے ابھی تک اس بات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اس کے باپ کو پولیس لے گئی ہے، اور عمران نے نواب شجاعت علی خان اور اس کی بیٹی نور بانو سے بھی کہا تھا کہ وہ بچی کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے اس کے ننھے سے دماغ کو کوئی زک پہنچے، اس لیے نواب شجاعت علی خان اور نور بانو نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے اپنے ڈیڈی کے پاس جانا ہے، وہ کمرے میں اکیلے ہیں، زرفا نے کہا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابھی نہیں بیٹی، تمہارے ڈیڈی کمرے میں نہیں ہے، عمران نے کہا تو زرقا بری طرح سے چونک پڑی۔ کمرے میں نہیں ہے تو کہاں ہے وہ؟ زرقا نے چونک کر پوچھا۔ ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم تمہارے ڈیڈی کا علاج کرائیں گے، اس لیے ہم نے انہیں ایک اسپتال میں بھیجا ہے تاکہ ان کا چیک اپ کرایا جا سکے، جولیا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسپتال؟ لیکن ڈیڈی وہاں اکیلے کیوں گئے ہیں؟ آپ سب نے مجھے ان کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا؟ زرقا نے کہا۔ انہیں آپ کے انکل اپنے ساتھ لے گئے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ آپ کے ڈیڈی کو لے کر واپس آ جائیں گے، جولیا نے کہا۔ آ جائیں گے نا؟ زرقا نے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور آ جائیں گے، جولیا نے مسکرا کر کہا تو زرقا مطمئن ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں چائے سرو کر دی گئی، وہ سب چائے کے سپ لینے لگے۔ ریڈو کمرے سے میرا سگار باکس اٹھا لاؤ، نواب شجاعت علی خان نے ریڈو سے کہا تو ریڈو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سندل کی لکڑی کا بنا ہوا ایک خوبصورت سگار باکس لے کر آ گیا۔ رکھ دو، نواب شجاعت علی خان نے کہا تو ریڈو نے سگار باکس ان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ کیا آپ سگار پیتے ہیں؟ صفدر نے نواب شجاعت علی خان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، دن میں ایک دو بار ہی پیتا ہوں، زیادہ نہیں، نواب شجاعت علی خان نے کہا۔ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس سے پرہیز ہی کیا کریں، عمران نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ کوشش تو بہت کرتا ہوں لیکن یہ ایک ایسی لت ہے جو ایک بار لگ جائے تو مشکل سے ہی چھوٹتی ہے، نواب شجاعت علی خان نے جواب دیا۔ میں خود بھی ڈیڈی کی اس عادت سے ناراض ہوں لیکن انہیں میری ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں ہے اور سگار چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے، نور بانو نے کہا۔ چھوڑ دوں گا، جلد ہی چھوڑ دوں گا، نواب شجاعت علی خان نے کہا۔ ہر بار آپ یہی کہتے ہیں، نور بانو نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ اچھا اچھا، اب مہمانوں کے سامنے تو مجھے ناراضگی نہ دکھاؤ، یہ کیا سوچیں گے، نواب شجاعت علی خان نے کہا اور انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سگار باکس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایک منٹ رکیں، عمران نے اچانک کہا تو نواب شجاعت علی خان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ نواب شجاعت علی خان نے اس کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس سگار باکس میں سگار ہی ہے؟ عمران نے کہا۔ سگار باکس میں سگار نہیں تو اور کیا ہوگا؟ نواب شجاعت علی خان نے کہا۔ کیا آپ کے سگار زندہ ہیں؟ عمران نے کہا۔ تو اس کے عجیب و غریب سوال پر نہ صرف نواب شجاعت علی خان بلکہ اس کی بیٹی نور بانو اور عمران کے ساتھی بھی چونک پڑے۔ سگار زندہ ہوتے ہیں؟ یہ تم کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو عمران بیٹا، نواب شجاعت علی خان نے منہ بنا کر کہا اور ایک بار پھر سگار باکس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رک جائیں، اگر آپ نے سگار باکس اٹھا کر کھول لیا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو نواب شجاعت علی خان کا ہاتھ ایک بار پھر رک گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، سگار باکس کو اٹھانے سے بھلا نواب صاحب کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ इस बॉक्स में सिगार नहीं, नवाब साहब की मौत बंद है। इमरान ने कहा तो उन सब के चेहरों पर हैरत के तासुरात फैलते चले गए। सिगार बॉक्स में मौत, ये आप क्या कह रहे हैं? नूरबानो ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इस सिगार बॉक्स को एहतियात से खोल कर देख लें, मौत खुद ही आपके सामने आ जाएगी, इमरान ने कहा। लेकिन मैंने सुबह ही इसमें से एक सिगार निकाल कर पिया था, इसमें सिवाय सिगारों के और कुछ नहीं है, नवाब शुजात अली खान ने कहा। आपके सिगार निकालने के बाद इस बॉक्स में मौत बंद कर दी गई है, ताकि दूसरी बार जैसे ही आप सिगार निकालने के लिए इस बॉक्स में हाथ डालें तो मौत आप पर झपट पड़े और आप भी अबुल हसन की तरह आन जहानी हो जाएं, इमरान ने कहा। एक मिनट, मैं खोलती हूँ सिगार बॉक्स, नूरबानो ने कहा और उसने सामने पड़े हुए ट्रे से एक टीस्पून उठाया और उसे सिगार बॉक्स के करीब ले गई। उसने टीस्पून के साथ एहतियात के साथ सिगार बॉक्स का ढक्कन उठाया और फिर उन सब की नजरें जैसे ही सिगार बॉक्स के अंदर पड़ी वो इस बुरी तरह से उछल पड़े जैसे वाकई सिगार बॉक्स में उन्हें मौत दिखाई दे गई हो। सिगार बॉक्स में एक सियाह रंग का सांप दिखाई दे रहा था, सांप ज्यादा बड़ा नहीं था। सिगार बॉक्स का ढक्कन खुलते ही उस सांप ने खौफनाक अंदाज में फुनकारते हुए अपना फन उठा लिया था। ये तो ब्लैक कोबरा की सबसे छोटी और इंतहाई खतरनाक और जहरीली नस्ल का सांप, गमाटा ने थर थर कांपते हुए लहजे में कहा। सांप देखकर नवाब शुजात अली खान और उनकी बेटी नूरबानो तो जैसे अपनी जगहों पर साकित से होकर रह गए थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सिगार बॉक्स में मौजूद सांप की तरफ देख रहे थे, जो छोटी छोटी आंखों से उनकी तरफ देखता हुआ अपनी दो शाखा जबान निकाले बार बार फुनकारे मार रहा था। हाँ, किंग कोबरा के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला और खतरनाक सांप है, जिसका काटा पानी भी नहीं मांगता है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसका जहर एक लम्हे में उसे मौत के घाट उतार देता है। इस सांप के जहर का दुनिया में कोई तरियाक नहीं है, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सिगार बॉक्स में जहरीला सांप मौजूद है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने इसकी फुनकार सुन ली थी, इसकी मखसूस फुनकार की आवाज सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि इस बॉक्स में ब्लैक कॉब सांप मौजूद है, इमरान ने जवाब दिया। ओह गॉड, अगर ये सांप सचमुच टेडी को काट लेता तो, नूरबानो ने थरथराते हुए कहा। तो अब तक तुम यतीम हो गई होती, इमरान ने कहा तो नूरबानो उसे तेज नजरों से घूरने लगी। हटाओ इसे यहाँ से, इसे देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, नवाब शुजात अली खान ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। तो इमरान ने हाथ आगे बढ़ाकर टीस्पून से बॉक्स बंद कर दिया। अब ले जाओ इसे और बॉक्स समेत आग में झोंक दो, अगर ये बच निकला तो न जाने महल में किस किस को काटेगा, इसका शायद कोई अंदाजा भी ना लगा सके, इमरान ने कहा। तो रेडो ने डरते डरते बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। तुम रुको गमाटा, तुम ये बॉक्स ले जाओ, मुझे रेडो से चंद बातें करनी है, इमरान ने कहा। मैं गमाटा ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। हाँ तुम, सांप बॉक्स के अंदर है और इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये बॉक्स के अंदर से तुम्हें काट सके, ले जाओ इसे यहाँ से अभी फौरन, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो गमाटा ने फौरन रेडो से बॉक्स ले लिया और उसे लेकर तेज तेज चलता हुआ एक तरफ बढ़ता चला गया। रेडो, तुम बताओ तुम ये बॉक्स कहाँ से लाए हो, इमरान ने रेडो की तरफ तेज नजरों से घूरते हुए कहा। ये नवाब साहब के कमरे में उनकी रीडिंग टेबल पर पड़ा था, रेडो ने खौफ भरे लहजे में कहा। क्या तुमने उसे वहां खोला नहीं था, इमरान ने पूछा। नहीं, रेडो ने जवाब दिया। क्या तुम्हारी कुव्वत समाअत इतनी कमजोर है कि तुम्हें इस बॉक्स में से सांप के फुनकारने की आवाज नहीं सुनाई दी, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, मैंने कोई फुनकार नहीं सुनी थी, रेडो ने इसी अंदाज में कहा। सुनी नहीं थी या तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया या फिर तुमने ही इस सिगार बॉक्स में सांप रखा था, इमरान ने उसे गहरी नजरों से घूरते हुए कहा। इमरान की बात सुनकर रेडो बुरी तरह से उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब, मैं भला नवाब साहब के सिगार बॉक्स में सांप क्यों रखूंगा, मैं तो सांपों से बेहद डरता हूँ, उन्हें देखकर ही मुझे पसीना आ जाता है, रेडो ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। कमरे से तुम ही सिगार बॉक्स उठाकर लाए थे, अगर तुमने सांप नहीं डाला तो फिर किसने डाला था, नवाब शुजात अली खान ने उसीले लहजे में कहा। मैं नहीं जानता, मैं इस पर ये जैसे रखा हुआ था मैं इसे इसी तरह उठा लाया, मुझे नहीं मालूम था कि इसमें इस कदर खतरनाक सांप भी हो सकता है, अगर मुझे मालूम होता तो मैं इस बॉक्स को हाथ भी न लगाता, बड़े नवाब, रेडो ने इसी तरह बुरी तरह से कांपते हुए कहा। ठीक है तुम जाओ, इमरान ने कुछ सोच कर कहा तो रेडो इजाजत तलब नजरों से नवाब शुजात अली खान की तरफ देखने लगा। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो नॉनसेंस, इमरान बेटे ने जाने का कह दिया है तो जाओ, नवाब शुजात अली खान ने सख्त लहजे में कहा तो रेडो ने सलाम किया और तेजी से मुड़कर एक तरफ दौड़ता चला गया। ये ठीक कह रहा है इमरान साहब, वैसे तो ये बेहद बहादुर और मजबूत आसाब का मालिक है और ताकतवर से ताकतवर दुश्मन के सामने डट जाता है, लेकिन सांप देखकर इसके औसान खता हो जाते हैं और ये वहां से फौरन भाग जाता है। रेडो के जाने के बाद नूर बानो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, क्यों ये सांप से इतना क्यों डरता है? जूलिया ने कहा, बचपन में इसके माँ और बाप दोनों को किंग कोबरा ने काट लिया था जिससे वो फौरन हलाक हो गए थे। इसने अपनी आंखों से किंग कोबरा को अपने माँ बाप को डसते देखा था, तब से इस पर सांप का खौफ हावी है और सांप के तस्करे से ही इसकी हालत गैर हो जाती है, नूर बानो ने जवाब दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एहसान है जो इमरान बेटे ने मेरी जान बचा ली। अगर मैं इस बॉक्स में हाथ डाल देता तो जहरीला सांप मुझे एक लम्हे में काट लेता और फिर वाकई अब तक मेरी यहाँ लाश ही पड़ी होती। इस सांप के बारे में मुझे मालूम है, ये अगर किसी को काट ले तो इंसान एक तो फौरन हलाक हो जाता है और दूसरा ये कि उसके जहर से इंसानी लाश तेजी से गलना सड़ना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में लाश का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता, नवाब शुजात अली खान ने हकलाते हुए कहा। जी हाँ, इस सांप के जहर से इंसानी हड्डियां भी मोम की तरह पिघल जाती हैं, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। लेकिन ये सांप आया कहाँ से? जहां तक मेरा ख्याल है ऐसे सांप पाक एशिया के किसी हिस्से में नहीं पाए जाते, सफदर ने कहा। हाँ, ये सांप ब्राजील के घने जंगलों में होते हैं या फिर दूर दराज के ऐसे जजीरों पर जहाँ घने जंगल हों, इमरान ने कहा। ओह, अगर ऐसे सांप यहाँ नहीं पाए जाते तो फिर ये सांप इस सिगार बॉक्स में कैसे आ गया, नूर बानो ने हैरत भरे लहजे में कहा। सांप सिगार बॉक्स में खुद नहीं आया बल्कि इसे सिगार बॉक्स में डाला गया है ताकि नवाब शुजात अली खान को इस जहरीले सांप के जहर का शिकार बनाया जा सके, इमरान ने कहा। ओह, लेकिन मेरे सिगार बॉक्स में ये सांप किसने डाला है और इसे ब्राजील के जंगलों से यहाँ कौन लाया है, नवाब शुजात अली खान ने कहा। उनके चेहरे पर बदस्तूर मौत का सा खौफ फैला हुआ था। ये तो किसी ऐसे शख्स का काम है जिसे या तो ऐसे जहरीले सांप पालने का शौक हो या फिर वो सांपों के जहर निकालने का काम जानता हो, वरना इन सांपों को इस तरह संभाल कर रखना नामुमकिन है, इमरान ने कहा। लेकिन हम में से तो ऐसा कोई नहीं है जो सांप पालने का शौकीन हो या जहरों पर रिसर्च करता हो, नवाब नूर बानो ने कहा। तो फिर इस सांप को खसूसी तौर पर यहाँ इसलिए मंगवाया गया है ताकि इससे नवाब शुजात अली खान को हलाक किया जा सके, जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। इन सांपों के बारे में कहा जाता है कि अगर इन सांपों को किसी बंद और ऐसी जगह पर रखा जाए जहां हवा का गुजर ना हो तो ये बेहोशी की हालत में वहां साल हर साल पड़े रहते हैं और फिर हवा मिलते ही ये दोबारा जाग उठते हैं। भूख प्यास की वजह से इन सांपों का जहर और ज्यादा खतरनाक और सरीउल असर हो जाता है। हो सकता है कि ये सांप ब्राजील से बाकायदा बंद पैकिंग में मंगवाया गया हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले चंद रोज में कोई गैर मुल्की पैकेट बैरून मुल्क खास तौर पर ब्राजील या अफ्रीकी जंगलों से यहाँ आया था, इमरान ने उन सब की तरफ गौर से देखते हुए कहा। नहीं, यहाँ कोई पैकेट नहीं आया और ना ही हम में से किसी ने मंगवाया है, नवाब शुजात अली खान ने कहा। कोई खामोशी और राजदारी से भी तो ऐसा पैकेट यहाँ मंगवा सकता है, जूलिया ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसके बारे में अबुल हसन ज्यादा जानता था क्योंकि महल की डाक उसी के कंट्रोल में थी। कौन कहाँ से क्या भेजता है और इस महल से किसे और कहाँ कहाँ पार्सल भिजवाए जाते हैं, उन सब का इख्तियार अबुल हसन के पास ही था, नूर बानो ने जवाब दिया। क्या अबुल हसन डाक खुद वसूल करता था, सफदर ने पूछा। हाँ, वो किसी और को डाक लेने नहीं देता था, जो भी डाक आती थी चाहे वो रजिस्टर्ड हो या कोरियर, सब अबुल हसन खुद वसूल करता था और फिर वो खतूत या पार्सल मुतालिक अफराद तक पहुंचाता था जिनके नाम खतूत या पार्सल आते थे, नूर बानो ने कहा। ये मामला सुलझने के बजाय उलझता ही चला जा रहा है और इस मामले को सुलझाते हुए हमें भी 3 बार निशाना बनाने की कोशिश की गई है। जब हम माडो गमाटा और रेडो के साथ यहाँ आ रहे थे पहली बार, तब हम पर हमला किया गया और हमारी हिफाजत करते हुए बेचारे माडो को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। दूसरी बार दो अफराद नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आए थे जो हमें एक बंद ब्रीफ केस में मौजूद गैस से बेहोश करके बेहोशी की हालत में हलाक करना चाहते थे, और तीसरी बार हम पर कल शाम के बाद हमला किया गया था जब हम सबके साथ डिनर करके वापस गेस्ट रूम में गए थे। हमें तहखाने के खुफिया कमरे में कुर्सियों पर रस्सी रस्सियों से बांध दिया गया था और फिर हमें हलाक करने के लिए उस कमरे में आइस कम गैस फैला दी गई थी, जिससे कमरे की ऑक्सीजन तेजी से खत्म होनी शुरू हो गई। अगर हम थोड़ी देर और कमरे में कैद रह जाते तो वहां से ऑक्सीजन खत्म हो जाती और हमारे दम घुट जाते और हम वही एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर करम किया और हम अपनी कोशिशों से जिंदाने मौत से निकलने में कामयाब हो गए। कोई तो है जो हमें इस केस पर काम करने से रोकना चाहता है। उसे शायद ये बात गवारा नहीं कि हम इस केस पर काम करें, इसलिए वो हमें यहाँ से या तो भगा देना चाहता है या फिर मौत के घाट उतार देना चाहता है ताकि वो यहाँ आजादी से अपना काम कर सके। इमरान ने कहा, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है इमरान बेटे कि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा दुश्मन वाकई बहुत चालाक और बाइख्तियार मालूम होता है। इस कदर सिक्योरिटी के बावजूद उसने अबुल हसन को हलाक कर दिया है और फिर मुझ पर मुतअद्दिद हमले कर रहा है। मैं इन हमलों से आखिर कब तक खुद को बचा सकूंगा? आज नहीं तो कल उसका वार चल ही जाएगा। और फिर नवाब शुजात अली खान ने रंजीदा लहजे में कहा, जिंदगी और मौत का इख्तियार तो अल्लाह ताला के पास है नवाब साहब। जो रात कब्र में आनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अपनी जिंदगी बचाने के लिए अल्लाह ने हम सबको जिद्दोजहद करने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए। अभी अल्लाह ताला को आपकी जिंदगी मकसूद है, इसलिए बार बार इंतहाई जानलेवा हमले होने के बावजूद आप हमारे सामने जिंदा सलामत बैठे हुए हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हालात का मुकाबला करने वालों की ही जीत होती है, इमरान ने कहा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी की फिक्र लाहक हो गई है। मेरे साथ साथ अब तुम और तुम्हारे दोस्त भी मेरे दुश्मनों की नजरों में हैं। अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बाप और सर सुल्तान को क्या जवाब दूंगा? उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? नवाब शुजात अली खान ने उसी तरह मायूसाना लहजे में कहा। आपके पास भी हर इंसान की तरह एक ही मुंह है, यही दिखा दीजिएगा, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। तो नवाब शुजात अली खान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। तुम शायद मजाक कर रहे हो, नवाब शुजात अली खान ने कहा। उनके लहजे में अभी तक अबुल हसन की मौत का गम मौजूद था। नहीं, मैं क्रिकेट मैच खेल रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। क्रिकेट मैच? क्या मतलब? नवाब शुजात अली खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आप क्रिकेट मैच के बारे में कुछ नहीं जानते। खैर छोड़े इन बातों को, ये बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं, इमरान ने उसके चेहरे पर अब संजीदगी नजर आने लगी थी। सच पूछो तो मैं अब तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की जिंदगियों का रिस्क नहीं लेना चाहता, नवाब शुजात अली खान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अपनी बात की वजाहत करें, इमरान ने इस बार खुश्क लहजे में कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ जिस साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ जो तहकीकात कर रहे हो उसे बंद कर दो और यहाँ जो होता है होने दो। अगर वाकई अल्लाह ताला को मेरी जिंदगी अजीज है तो दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, और अगर मेरी मौत ऐसी ही लिखी है तो फिर लाख कोशिश कर ले मुझे नहीं बचा सकेगा, नवाब शुजात अली खान ने कहा। तो आप ये चाहते हैं कि हम यहाँ से वापस चले जाएं, इमरान ने कहा। हाँ, यही तुम सबके लिए बेहतर होगा, नवाब शुजात अली खान ने भी खुश्क लहजे में कहा। तो आप अपने दुश्मनों को खुली छूट देना चाहते हैं कि वो हमारे जाते ही आप पर हमला करें और आपको हलाक कर दें, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं अपनी किस्मत बदल नहीं सकता, नवाब शुजात अली खान ने मायूसाना लहजे में कहा। आप मायूसी की बात कर रहे हैं नवाब साहब, और मायूसी गुनाह है, सफदर ने कहा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी कि मेरे घर में और मेरे होते हुए तुम में से किसी को नुकसान पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने की बजाय मर जाना ज्यादा पसंद करूंगा, नवाब शुजात अली खान ने कहा। सोच लें, हमारे जाते ही आप पर हमला हो गया तो, तनवीर ने कहा। जो होना है हो जाए, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, नवाब शुजात अली खान ने कहा। लेकिन, जूलिया ने कहना चाहा तो इमरान ने फौरन हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया। ठीक है, हम इस केस पर अब कोई काम नहीं करेंगे और यहाँ से वापस भी चले जाएंगे। उसके बाद आप पर क्या गुजरेगी और आपका क्या अंजाम होगा, इसकी जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होगी, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। जाहिर है, मेरी मौत की जिम्मेदारी भला तुम पर कैसे आयद की जा सकती है, नवाब शुजात अली खान ने कहा। ओके, तो फिर हमारी तहकीकात का सिलसिला आज से बंद। हम इस सिलसिले में मजीद कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और कल सुबह हम यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, वो भी इस सूरत में अगर आप हमें एक रात और यहाँ रुकने की इजाजत दें, वरना हम अभी यहाँ से चले जाते हैं, इमरान ने करप लहजे में कहा। लेकिन इमरान, जूलिया ने एक बार फिर कहना चाहा, तुम खामोश रहो, नवाब साहब को जवाब देने दो कि ये हमारी एक रात की और मेजबानी कबूल कर सकते हैं या नहीं, इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहा इमरान बेटा, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। लेकिन बहरहाल मुझे खुशी होगी कि तुम अपने दोस्तों के साथ आज यहाँ रहो। मैं मुसल्ला अफराद से कहकर तुम्हारी सिक्योरिटी सख्त करा दूंगा ताकि तुम पर दोबारा कोई हमला ना हो। मुसल्ला अफराद कल सुबह तक तुम्हारे पास एक चिड़िया के बच्चे को भी फटकने नहीं देंगे, नवाब शुजात अली खान ने कहा। ओके, कल का नाश्ता हम एक साथ करेंगे और फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, इमरान ने कहा और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। जूलिया और उसके साथियों ने गुस्से से होंठ पीच रखे थे। इमरान का ये अंदाज उन्हें पसंद नहीं आया था। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान जैसा इंसान किसी को मौत के मुंह में छोड़कर इस तरह वापस चले जाने की बात कर सकता है। हालांकि वो जानता था कि नवाब शुजात अली खान की जिंदगी को महल में किस कदर खतरा है। अब तक वो उन साजिशी अनासिर का पता लगाने के लिए मुसलसल भाग दौड़ करता आया था और अब उसने अचानक नवाब शुजात अली खान की बात मानकर उनकी मदद किए बगैर वापस जाने का फैसला कर लिया था, जो उन्हें किसी भी तरह कबूल नहीं था। ये दुरुस्त था कि नवाब शुजात अली खान खुद उन्हें वापस जाने का कह रहे थे, लेकिन इमरान उन इंसानों में से नहीं था जो किसी की जान मुसीबत में देखकर भी इस आसानी से भाग जाता। आओ मेरे साथ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और तेज तेज चलता हुआ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ता चला गया। उसे जाते देखकर जूलिया और उसके साथी भी उठकर खड़े हो गए और फिर वो सब इमरान के पीछे गेस्ट रूम की तरफ बढ़ते चले गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया जो नवाब शुजात अली खान की बात मानकर फौरन यहाँ से जाने की हामी भर ली है, कमरे में आते ही जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो और मैं क्या करूं, नवाब शुजात अली खान खुद ही हमें यहाँ रहने नहीं देना चाहते, तो तुम क्या चाहती हो कि हम यहाँ जबरदस्ती रुककर उनसे अपनी मेहमान नवाजी कराएं, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम कम से कम उन्हें इन साजिशी अनासिर से बचाएं जो उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, जूलिया ने अपने बात की वजाहत करते हुए कहा। अब जब नवाब साहब ने खुद ही इस मामले से हाथ खड़े कर लिए हैं तो फिर हम भला क्या कर सकते हैं, उनके तावुन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इमरान ने कहा। फिर भी इंसानियत के नाते हमें उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, हम इस तरह उन्हें दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, सफदर ने कहा। नवाब साहब ने खुद ही हमें यहाँ से जाने का कहा है तो फिर भला हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इमरान ने कहा। तो तुमने वाकई यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है, जूलिया ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन वो तुम्हारा प्रोग्राम, उसका क्या होगा, जूलिया ने पूछा। अब मेरा सिवाय रेस्ट करने के और कोई प्रोग्राम नहीं है, तुम सब भी रेस्ट कर लो, यही हमारे लिए बेहतर है, इमरान ने कहा और जूलिया एक तवील सांस लेकर रह गई। अगर आपने यहाँ से जाने का फैसला ही करना था तो फिर आप आज की रात यहाँ क्यों रुकना चाहते हैं, इसकी कोई खास वजह, सफदर ने पूछा। नहीं, कोई खास वजह नहीं है, अबुल हसन की नागहानी मौत की वजह से आज का नाश्ता नहीं हुआ है और मैंने सुना है कि यहाँ का नाश्ता बेहद शानदार होता है, सिरी पाए, नहारी, हलीम, रोगनी नान और खास तौर पर मक्खन से भरे हुए लस्सी के ताजा गिलास। बस मैं एक बार ये शानदार नाश्ता करना चाहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सब तवील सांस लेकर रह गए। इमरान के जहन में न जाने क्या था, वो इन्हें इस वक्त बेहद अजीब और पुरिसरार दिखाई दे रहा था। रात के 2 बजे थे। इमरान और उसके साथी गेस्ट रूम में मौजूद थे। कमरे की लाइट्स ऑफ थी लेकिन उन्होंने सेलफोन की लाइट्स ऑन कर रखी थी। सेलफोन के महदूद रोशनी में वो सब एक एक मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठे हुए थे। नवाब शुजात अली खान के साथ डिनर करने के बाद वो सब गेस्ट रूम में आ गए थे और फिर इमरान की हिदायत पर वो सब अपने अपने बेड्स पर जाकर सो गए थे। रात 1 बजे इमरान ने अचानक उन सबको जगाया था और उन्हें लेकर उस टेबल पर आ बैठा था। वो सब हैरान थे कि इमरान ने उन्हें क्यों जगाया है। इमरान के चेहरे पर संजीदगी के तासुरात नुमाया थे। वो सब खामोशी से इमरान की तरफ देख रहे थे जैसे वो उससे पूछना चाहते हो कि अब ऐसा क्या हो गया जो उसने इन सबको जगाकर यहाँ बुलाया है। सारा इंतजाम मुकम्मल हो चुका है, अब तुम अपना अपना काम करने के लिए तैयार हो जाओ, इमरान ने उनसे मुखातिब होकर कहा। काम? कैसा काम, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमें महल के हर हिस्से और हर कमरे की भरपूर अंदाज में तलाशी लेनी है, इमरान ने कहा। तलाशी? क्या मतलब, सफदर ने चौंक कर कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि मांडो के घर से उसकी लॉक अलमारी से उसकी लिखी हुई डायरी गायब कर दी गई थी। इसी तरह जूलिया सलीम की बेटी जरफा से उसकी जो नोटबुक लाई थी वो भी अलमारी से गायब थी। तुम्हें और ये काम उस वक्त किया गया था जब हम पर कल रात हमला किया गया था। हमें इस महल की तलाशी लेकर न सिर्फ दर्पा की नोटबुक तलाश करनी है बल्कि चंद और चीजें भी तलाश करनी है। अगर वो चीजें हमें मिल जाती हैं तो समझ लो कि कल सुबह नाश्ते की टेबल पर मुजरिम हमारे सामने होगा, इमरान ने कहा। क्या मतलब? क्या अब भी तुम मुजरिम को बेनकाब करना चाहते हो? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अब इस केस पर काम नहीं करोगे, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तनवीर और सफदर के चेहरों पर भी हैरत के तासुरात दिखाई दे रहे थे। वो सब मैंने मुजरिम को सुनाने और मुतमईन करने के लिए कहा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुजरिम को सुनाने और मुतमईन करने के लिए? मैं समझी नहीं, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए जेब से एक छोटा सा आला निकाला और उनके सामने रख दिया। ये तो शायद पावर माइक है, सफदर ने चौंक कर कहा। शायद नहीं, ये पावर माइक ही है, इमरान ने कहा। तुम्हें ये कहाँ से मिला है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसी कमरे से। मुजरिम ने हमारी बातें सुनने के लिए इसे यहाँ छुपाया हुआ था। तुम्हारे सो जाने के बाद मैंने कमरे की तलाशी ली तो मुझे ये आला अलमारी के नीचे लगा हुआ मिल गया। यह इंतहाई ताकतवर आला है जिससे यहाँ होने वाली धीमी आवाजों को भी दूर मौजूद रिसीवर पर सुना जा सकता था, इमरान ने कहा। ओह, क्या अब भी ये माइक ऑन है? तनवीर ने कहा। नहीं, मैंने इसे ऑफ कर दिया है, इमरान ने कहा। अब समझी, तुम जानबूझकर यहाँ से वापस जाने की बातें कर रहे थे ताकि मुजरिम मुतमईन हो जाए कि अब हम इस केस पर काम नहीं करेंगे, जूलिया ने कहा। हाँ, मैंने ये बातें नवाब साहब के सामने भी इसीलिए कही थी कि मुजरिम ये समझ ले कि इस मामले में भी हमने हार मान ली है और अब हम वाकई इनके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे और ना ही उसके रास्ते में रुकावट बनेंगे, इमरान ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। गुड शो, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जूलिया ने जोश भरे लहजे में कहा। वही जो मैंने तुमसे कहा है, इमरान ने कहा। ये कि अब हम इस महल की तलाशी लेंगे, सफदर ने कहा। हाँ, हमें मुजरिम के खिलाफ सबूत हासिल करने हैं। हमारी नाकामी और वापसी का सुनकर मुजरिम हमसे मुतमईन हो गया होगा, इसलिए उसने अब तक सबूत जाया नहीं किए होंगे और मुझे यकीन है कि हमें उसके खिलाफ इस महल से बहुत ज्यादा सबूत मिल जाएंगे, इमरान ने कहा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मुजरिम कौन है? तनवीर ने कहा। कुछ उच्च अंदाजा है, लेकिन जब तक उसके खिलाफ मुझे ठोस सबूत नहीं मिल जाते उस वक्त तक मैं तुम्हें इसका नाम नहीं बताऊंगा, इमरान ने कहा। ठीक है, ना बताएं, लेकिन हम इतने बड़े महल की तलाशी कैसे लेंगे? नवाब साहब ने हमारी हिफाजत के लिए बाहर सिक्योरिटी तैनात कर रखी है और महल में भी जगह जगह मुसल्ला अफराद मौजूद हैं। हम उनकी नजरों से कैसे बचेंगे? सफदर ने कहा। ब्लैकआउट करके, इमरान ने जवाब दिया। ब्लैकआउट? क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। ब्लैकआउट का मतलब तारीकी होता है, गहरी तारीकी, इमरान ने कहा। वो तो मैं भी जानती हूँ कि ब्लैकआउट का मतलब गहरी तारीकी है, लेकिन ये सब होगा कैसे? सारे महल की तलाशी लेने के लिए हमें पूरे महल की रोशनी बंद करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल में ये होना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए हमें पूरी पावर सप्लाई ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी, जूलिया ने सर झटक कर कहा। हाँ, हम यहाँ ब्रेक डाउन ही करेंगे, इमरान ने कहा। क्या मतलब? क्या हम महल की पावर सप्लाई की मेन लाइनें काटेंगे? तनवीर ने चौंक कर कहा। नहीं, हम इस कमरे से भी महल में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। वो कैसे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान ने जेब में एक बार फिर हाथ डाला और एक तांबे का सिक्का निकाल कर उसके सामने रख दिया। ये पुराने जमाने का सिक्का था जो न जाने इमरान को कहाँ से मिल गया था। ये सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला है और इससे भला तुम क्या कर सकते हो? जूलिया ने सिक्का उठाकर हैरत से उसे देखते हुए पूछा। ये सिक्का मुझे इस अलमारी से मिला है जो न जाने कब का पड़ा हुआ था। खैर, ये सिक्का इस इमारत की पावर सप्लाई को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी मदद करेगा। यहाँ तारीकी फैलते ही हम खामोशी से बाहर निकल जाएंगे और फिर हम सब महल के अलग अलग हिस्सों और कमरों में फैल जाएंगे और वहां की तलाशी लेंगे। महल में तारीकी फैलते ही मुझे यकीन है कि तमाम कमरों के दरवाजे खुल जाएंगे और महल के मकीन कमरों से बाहर आ जाएंगे। हमें इस बात का ही फायदा उठाना है, इमरान ने कहा और फिर वो उन्हें बताने लगा कि किसे महल के किस हिस्से में जाना है और किन किन चीजों की तलाशी लेनी है। ओके, हम सब तैयार हैं, जूलिया ने कहा। गुड शो, फिर उठकर खड़े हो जाओ, इमरान ने उठते हुए कहा। लेकिन वो ब्रेक डाउन? जूलिया ने कहा। ये काम सफदर करेगा, इमरान ने मुस्कुराकर कहा और सिक्का सफदर की तरफ उछाल दिया। सफदर ने इसे हवा में ही दबोच लिया। चंद लम्हे वो सिक्के को देखता रहा, फिर उसकी आंखों में एक लख चमक आ गई थी। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर तेजी से एक दीवार की तरफ बढ़ गया। उस दीवार के नीचे एक ऊंची मेज रखी हुई थी। सफदर उसने इस पर चढ़ा और फिर उसने दीवार के ऊपर लगे हुए बल्ब को होल्डर से निकाल लिया। उसे होल्डर से बल्ब निकालते देख कर जूलिया और तनवीर के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें आ गई थी, जैसे वो भी समझ गए हों कि इमरान महल में ब्रेकडाउन कैसे कराना चाहता है। सफदर ने होल्डर में सिक्का फंसाया और फिर उसने बल्ब को दोबारा होल्डर में लगा दिया और छलांग लगाकर मेज से नीचे आ गया। अब बल्ब ऑन करो, इमरान ने कहा। तो सफदर ने दीवार पर लगा हुआ एक स्विच ऑन किया तो बल्ब के होल्डर में एक पटाखा सा छूटा और बल्ब एक लम्हे के लिए जलकर बुझ गया था। साथ ही दूर कहीं एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। लो, हो गया ब्रेकडाउन। लाइन क्रॉसिंग से इस महल के मेन सर्किट का फ्यूज उड़ गया है। अब जब तक ये स्विच ऑन रहेगा, इस महल में तारीकी का ही राज रहेगा। वो जितनी बार भी मेन सर्किट में का फ्यूज दुरुस्त करेंगे, उतनी ही बार मेन सर्किट फ्यूज में धमाके होते रहेंगे। जब तक इस होल्डर से सिक्का ना निकाला जाएगा, उस वक्त तक इस महल की सप्लाई बहाल नहीं होगी, इमरान ने कहा। तो इन तीनों ने इस बात में सर हिला दिए। बाहर होने वाले धमाके से जैसे हर तरफ भगदड़ मच गई थी। हर तरफ यकलख तारीकी छा गई थी और दौड़ने भागने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। हम दरवाजे के बजाय साइड की खिड़की से बाहर जाएंगे और उसी रास्ते से वापस कमरे में आएंगे, इमरान ने कहा। तो उन तीनों ने इस बात में सर हिला दिए। इमरान ने उन्हें मजीद चंद हिदायत दी और फिर वो सब खिड़की के पास आ गए थे। उन्होंने निहायत आहिस्तगी से खिड़की खोली और फिर वो एक एक करके खिड़की से बाहर निकलते चले गए। बाहर मुसल्ला अफराद ने टॉर्चेज रोशन कर ली थी और वो तेजी से उस तरफ दौड़े चले जा रहे थे जिस तरफ से उन्हें धमाके की आवाजें सुनाई दी थीं। वो शायद ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि धमाका कहाँ हुआ था और महल की सप्लाई यकलख्त क्यों बंद हो गई थी। इमरान सबसे आखिर में खिड़की से निकला था। बाहर तारीकी थी। वो मुसल्ला अफराद की टॉर्च की रोशनी से खुद को बचाता हुआ पंजों के बल दौड़ता हुआ महल की साइड की तरफ भागा जा रहा था। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर वो महल के अकबे हिस्से से होता हुआ फ्रंट की तरफ आया और फिर वो इंतहाई एहतियात से बरामदे से गुजरता हुआ एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसे हर तरफ से दौड़ने भागने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। नवाब शुजात अली खान, नूर बानो और बहुत से अफराद चीख चीख कर ब्रेकडाउन के बारे में पूछ रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर इमरान मुतमईन हो गया था कि उसके अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और कमरों के मकीन वाकई कमरों से बाहर निकल चुके थे। इमरान आगे बढ़कर बड़े इत्मीनान से एक खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। कमरे में गहरी तारीकी थी। कमरे का मकीन कमरे में मौजूद नहीं था। इमरान ने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर उसने जेब से सेलफोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन कर ली। उसे यकीन था कि जब तक महल की सप्लाई बहाल नहीं हो जाती, उस वक्त तक कोई कमरे में नहीं आएगा और वो इस दौरान आराम से कमरे की तलाशी ले सकता था। अगले दिन वो सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। नवाब शुजात अली खान, उनकी बेटी नूर बानो, सिक्योरिटी इंचार्ज राठौर, गमाटा और रेडो सब वहां मौजूद थे। नूर बानो के साथ सलीम की बेटी जरका भी मौजूद थी। वो सब नाश्ते पर इमरान और उसके साथियों का इंतजार कर रहे थे। नवाब शुजात अली खान के मुलाजिम अब्दुल करीम ने इमरान और उसके साथियों को जाकर जगाया था और उन्हें बता दिया था कि नवाब साहब नाश्ते की मेज पर उनका इंतजार कर रहे हैं। इमरान ने अब्दुल करीम से कहा था कि वो तैयार होकर आ रहे हैं। अब्दुल करीम ने इसी तरह नवाब शुजात अली खान को बता दिया था। नवाब शुजात अली खान बार बार रेस्ट वॉच देख रहे थे। उनके चेहरे पर कदरे कबीदगी के तासुरात नुमाया थे, जैसे इमरान और उसके साथियों के नाश्ते की मेज पर देर से आने पर उन्हें कोफ्त हो रही हो। आखिर ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? मेज पर नाश्ता ठंडा हो रहा है। अगर उन्हें नहीं आना था तो अब्दुल करीम को बता देते ताकि हम तो नाश्ता शुरू कर देते, नूरबानो ने मुंह बनाते हुए कहा। आ जाएंगे बेटी, हो सकता है कि रात को वो भी हमारी तरह लेट सोए हों। 3 घंटों तक तो महल की सप्लाई बहाल होने में लगे, हम भी जागते रहे। हम लेट सोने के बावजूद सुबह वक्त पर उठ गए थे। वो सब शहरी लोग हैं, हो सकता है कि अब तक उनकी नींद पूरी ना हुई हो और उनके लिए उठना मुश्किल हो रहा हो, नवाब शुजात अली खान ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं डैडी, रात को वाकई लाइट ने बेहद परेशान किया। आप तो जानते ही हैं कि मैं अंधेरे से कितना डरती हूँ। रात को कमरे की लाइट जलाकर सोती हूँ, लेकिन रात न जाने क्या हुआ था कि लाइट बार बार ट्रिप कर रही थी और मैं डर के मारे कमरे में भी नहीं जा रही थी, नूरबानो ने कहा। खुद मेरा भी यही हाल था, मैं भी कमरे से बाहर ही रहा था। खैर छोड़ो, और शुक्र करो कि सप्लाई बहाल हो गई थी, वरना सारी रात हमें जाग कर ही गुजारनी पड़ती, नवाब शुजात अली खान ने कहा। उसी लम्हे अब्दुल करीम अंदर आया। उसे देखकर वो चौंक पड़े। क्योंकि वो अकेला नहीं था, उनके हमराह सर सुल्तान भी थे। अरे सर सुल्तान, आप यहाँ? सर सुल्तान को देखकर नवाब शुजात अली खान हैरत भरे लहजे में कहा और उनके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े हो गए। नूर बानो और दूसरे अफराद भी सर सुल्तान के एहतराम के लिए खड़े हो गए थे। हाँ, क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप नाश्ते के वक्त यहाँ आए हैं। अब हम मिलकर नाश्ता करेंगे, नवाब शुजात अली खान ने उनसे बड़े पुरतपाक अंदाज में मुसाफा करते हुए कहा। हाँ, मैं भी आज आपके साथ नाश्ता करने के लिए ही आया हूँ, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड शो, ये आपका अपना ही घर है, जब चाहें आप यहाँ आज आ जा सकते हैं। और नाश्ता तो क्या, हमें आपके साथ लंच और डिनर करने का भी लुत्फ आएगा, नवाब शुजात अली खान ने कहा। और उन्होंने मुलाजिम से कहकर नाश्ते की मेज पर सर सुल्तान के लिए एक और कुर्सी रखवा ली। इमरान और उसके साथी नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? सर सुल्तान ने कहा। बस आते ही होंगे, रात को पावर सप्लाई में कुछ मसला हो गया था जिसे दुरुस्त करने में वक्त लग गया था। शायद वो देर तक जागते रहे हैं, इसीलिए उनकी आंख वक्त पर नहीं खुली होगी, नवाब शुजात अली खान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे इमरान और उसके साथी भी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। अरे शाह सुल्तान साहब भी तशरीफ लाए हैं, मरहबा मरहबा, जहे नसीब जहे नसीब, आज सुबह सुबह शाह आलम का दीदार हुआ है, उम्मीद है आज का दिन शानदार गुजरेगा, सर सुल्तान को देखकर इमरान ने मुस्कुराते हुए मखसूस लहजे में कहा। उसने आगे बढ़कर सर सुल्तान से हाथ मिलाया और फिर उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। जूलिया, सफदर और तनवीर भी सर सुल्तान से सलाम दुआ के बाद अपनी मखसूस नशिस्तों पर बैठ गए थे। अब्दुल करीम, नाश्ता सर्व करो, नवाब शुजात अली खान ने अपने मुलाजिम से मुखातिब होकर कहा। जी साहब, अब्दुल करीम ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा और जाने के लिए मुड़ गया। एक मिनट, इमरान ने कहा। तो अब्दुल करीम वहीं रुक गया और इस्तेजाबी नजरों से इमरान की तरफ देखने लगा। क्या हुआ इमरान बेटा, नवाब शुजात अली खान ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। मैंने सर सुल्तान की तरह कुछ और मेहमानों को भी बुलाया है, वो आ जाएं तो फिर हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे, इमरान ने कहा। तो नवाब शुजात अली खान चौंक पड़े। मेहमान? क्या मतलब, कौन मेहमान? नवाब शुजात अली खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस आने ही वाले हैं, आ जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कौन है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सर सुल्तान साहब को आपने यहाँ बुलाया है, नूर बानो ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, हम इनके बगैर नाश्ता नहीं करते, अगर हम इनके साथ नाश्ता ना करें तो वो नाश्ता हमें मुश्किल से ही हजम होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सर सुल्तान हैरत से उसकी शक्ल देखने लगे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम रोजाना मेरे साथ बैठकर ही नाश्ता करते हो, सर सुल्तान ने कहा। कहने में क्या हर्ज है, इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान और नवाब शुजात अली खान मुस्कुराए बगैर रह न सके। अच्छा ये बताओ कि तुमने सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया है, सर सुल्तान ने कहा। नवाब साहब के महल का नाश्ता कराने के लिए, इमरान ने कहा। क्या मतलब, क्या तुमने मुझे यहाँ सिर्फ नवाब साहब के महल का नाश्ता करने के लिए बुलाया है, सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, आप चाहें तो नवाब साहब के साथ लंच और डिनर भी कर सकते हैं, इमरान भला आसानी से कहाँ बाज आने वाला था। इमरान बेटा ठीक कह रहा है सुल्तान साहब, आप हमारे साथ नाश्ता भी करें, लंच भी और डिनर भी, इससे बढ़कर भला हमारे लिए क्या खुशकिस्मती हो सकती है, नवाब शुजात अली खान ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन, सर सुल्तान ने कहना चाहा कि उसी वक्त एक और मुलाजिम अंदर आया। नवाब साहब, पुलिस वाले आए हैं, मुलाजिम ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। पुलिस वाले इस वक्त क्यों, नवाब शुजात अली खान ने चौंक कर कहा। उन्हें भी मैंने ही बुलाया है, इमरान ने कहा। तो वो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन क्यों, नवाब शुजात अली खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या आप हमारे साथ चंद पुलिस अफसरान को नाश्ता नहीं करा सकते, इमरान ने कहा। ऐसी बात नहीं है, यहाँ 100 मेहमान आ जाएं तो भी उनके लिए नाश्ते में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन सुबह सुबह आपको यहाँ पुलिस बुलाने की जरूरत क्यों पेश आ गई, नूर बानो ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर आपको उनका आना बुरा लगा है तो मैं उन्हें वापस भिजवा देता हूँ, इमरान ने कहा। ओह नहीं, जब वो आ ही गए हैं तो फिर उन्हें ऐसे वापस नहीं जाने दिया जाएगा, बुला लाओ उन्हें, नवाब शुजात अली खान ने कहा। तो मुलाजिम सर हिलाकर मुड़ा और बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद वो इंस्पेक्टर शफीक, सब इंस्पेक्टर अरशद और चंद मुसल्ला पुलिस कांस्टेबल्स के साथ अंदर आ गया। अब्दुल करीम, इन सब की यहाँ कुर्सियां लगवाओ, हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे, नवाब शुजात अली खान ने कहा। तो अब्दुल करीम ने इस बात में सर हिलाकर दूसरे मुलाजमीन को हिदायत देनी शुरू कर दी। कुछ कुछ ही देर में मेज के गिर्द कई कुर्सियां लगा दी गईं और नवाब शजात अली खान के कहने पर न सिर्फ इंस्पेक्टर शफीक बल्कि सब इंस्पेक्टर अरशद और उनके साथ आने वाले कॉन्स्टेबल्स को भी नाश्ते की मेज पर बिठा दिया गया। किसी और को भी बुलाया है तो बता दें इमरान साहब, हम उसका भी इंतजार कर लेते हैं, वरना नाश्ता मेज पर लगवाया जाए, नूर बानो ने कहा। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप उसे साथ नहीं लाए हैं क्या, इमरान ने इंस्पेक्टर शफीक से मुखातिब होकर कहा। लाया हूँ जनाब, आपका हुक्म हो और मैं उस पर अमल ना करूँ ऐसा भला कैसे मुमकिन है, इंस्पेक्टर शफीक ने कहा। तो फिर लाए उसे यहाँ ताकि नाश्ता शुरू किया जा सके, अब तो भूख के मारे मेरे पेट में चूहों ने रॉक एंड रोल डांस शुरू कर दिया है, इमरान ने कहा। तो इंस्पेक्टर शफीक ने सब इंस्पेक्टर अरशद को इशारा किया तो वो उठकर खड़ा हुआ और उसने दो कांस्टेबलों को अपने साथ लिया और बाहर चला गया। अब और कौन आने वाला है, नवाब शुजात अली खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक खास मेहमान, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो नवाब शुजात अली खान एक तवील सांस लेकर रह गए। थोड़ी ही देर में सब इंस्पेक्टर अरशद अपने दोनों कांस्टेबल्स के साथ अंदर आया तो उनके हमराह जरका का बाप सलीम भी था। सलीम को देखकर न सिर्फ नवाब शुजात अली खान बल्कि उनकी बेटी नूर बानो, राठौर और नवाब साहब के दोनों स्पेशल गार्ड्स भी एक झटके से उठकर खड़े हो गए थे, जबकि अपने बाप को देखकर जरफा का चेहरा मुसर्रत से गुलनार हो गया था। वो उठकर डैडी डैडी चिल्लाती हुई अपने बाप की तरफ बढ़ी और जाकर उससे चिमट गई। सलीम चंद लम्हे हैरत से उसे देखता रहा, फिर उसने अपनी बेटी को गले लगाकर प्यार करना शुरू कर दिया। सलीम इस वक्त पहले से काफी बेहतर दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर ना वहशत दिखाई दे रही थी और ना ही वो उलझा हुआ दिखाई दे रहा था और ना ही परेशान नजर आ रहा था। क्या मतलब, या आपने सलीम जैसे पागल शख्स को यहाँ क्यों बुलाया है, क्या ये भी हमारे साथ नाश्ता करेगा, नूरबानो ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्यों, क्या पागल नाश्ता नहीं करते, इमरान ने कहा। मैं नहीं जानती, लेकिन ये हमारे साथ बैठा और इसने कोई गड़बड़ कर दी तो, नूरबानो ने परेशानी के आलम में कहा। नहीं अब ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा, क्यों इंस्पेक्टर शफीक, इमरान ने पहले नूरबानो से कहा और फिर इंस्पेक्टर शफीक की तरफ मुतवज्जे हुआ। जी हाँ, इसकी हालत अब पहले से कहीं बेहतर है और ये होश में भी है, इंस्पेक्टर शफीक ने कहा। होश में है, क्या मतलब, नवाब शुजात अली खान ने चौंक कर कहा। इसे नाश्ते की टेबल पर तो बैठने दें, फिर आपके सामने सारी बातें खुल जाएंगी नवाब साहब, इतनी भी क्या बेसब्री है, इमरान ने कहा। आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, नवाब शुजात अली खान ने इस बार कदरे नागवार लहजे में कहा। कुछ नहीं, आज चूंकि हमें वापस जाना है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम सब मिल बैठ कर एक साथ नाश्ता करें, यहाँ सलीम की कमी थी इसलिए मैंने मई पुलिस के इसे भी यहाँ बुला लिया है। अब ये मजबूरी है कि दुनिया से जाने वाला इंसान लौट कर वापस नहीं आता, वरना मैं अबुल हसन को भी बुला लेता। क्यों गमाटा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, इमरान ने अचानक पहले नवाब शुजात अली खान से और फिर अचानक गमाटा से मुखातिब होकर कहा। जी मैं क्या कह सकता हूँ, गमाटा ने इमरान के अचानक मुखातिब होने पर बौखलाए हुए लहजे में कहा। ओह हाँ, तुम भला क्या कह सकते हो, इमरान ने कहा। अब नाश्ता मंगवाएं, नूरबानो ने जले कटे लहजे में कहा। हाँ क्यों नहीं, इससे पहले कि मेरे पेट में रॉक रॉक एंड रोल करते हुए चूहे कोई और डांस करना शुरू कर दें, आप फौरन मेज पर नाश्ता लगवा दें, इमरान ने कहा। तो नवाब शुजात अली खान ने एक तवील सांस लेते हुए अब्दुल करीम को नाश्ता लाने का इशारा कर दिया और अब्दुल करीम मौदबाना अंदाज में सर हिलाता हुआ अपने साथियों को लेकर किचन की तरफ बढ़ गया। सलीम के लिए भी वहां एक कुर्सी लगा दी गई थी और वो सब मेज के गिर्द बैठ गए थे। नूरबानो और नवाब शुजात अली खान के साथ साथ गमाटा, राठौर और रेडो के चेहरे पर भी शदीद उलझन के तासुरात दिखाई दे रहे थे, जैसे उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिर इमरान ये सब क्या कर रहा है और इसे नाश्ते के वक्त इन सबको वहां बुलाने की क्या जरूरत थी। इंस्पेक्टर शफीक ने एक फाइल इमरान को दे दी थी जो वो अपने साथ लाया था। इमरान खामोशी से फाइल देखने में मसरूफ हो गया था। थोड़ी ही देर में वहां नाश्ता सर्व कर दिया गया था और फिर वो सब नाश्ता करने में मसरूफ हो गए। अगर सब नाश्ता कर चुके हों तो बाकी का प्रोग्राम शुरू किया जाए, इमरान ने कहा। तो वो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। कैसा प्रोग्राम, नवाब शुजात अली खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वही प्रोग्राम जिसके लिए मैंने इन सबको यहाँ बुलाया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, आपने तो कहा था कि आप इन सब के साथ नाश्ता करना चाहते हैं, अब इसके अलावा और क्या प्रोग्राम है आपका जो आप शुरू करना चाहते हैं, नूरबानो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे, बल्कि शायद अपनी कुर्सियों पर उछल पड़े। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी कुर्सियों को पकड़कर मोहतात होकर बैठें, ताकि अचानक उछलने से आप कुर्सियों समेत गिर ना पड़े, इमरान ने कहा। ये क्या मजाक है, सर सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये मजाक नहीं है जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चंद ऐसी हकीकतें आप सबके सामने लाने वाला हूँ जिन्हें जानकर वाकई आप हैरान रह जाएंगे, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। कौन सी ऐसी हकीकतें हैं, नवाब शुजात अली खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये कि आपके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, वो कौन है जो आपको हलाक करना चाहता है, और अबुल हसन को हलाक करने वाला कौन है, वगैरह वगैरह, इमरान ने कहा। तो नवाब शुजात अली खान और वहां मौजूद माँ सिवाय इमरान के साथियों के तमाम अफराद चौंक पड़े। क्या मतलब, क्या तुम्हें पता चल गया है कि मेरे खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है, नवाब शुजात अली खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, और आपको ये सुनकर यकीनन जोरदार झटका लगेगा कि आपके खिलाफ साजिशें करने वाला, बल्कि साजिश करने वाले यही मौजूद हैं इसी नाश्ते की मेज पर, इमरान ने कहा। और उसकी बात किसी धमाके से कम नहीं थी, नवाब शुजात अली खान समेत वहां मौजूद तमाम अफराद बुरी तरह से उछल पड़े। अभी तो मैंने आगाज भी नहीं किया और आप सबने उछलने की मशकें भी शुरू कर दी, आगे आगे देखिए होता है क्या, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो गमाटा एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। आपको क्या हुआ जनाब गमाटा साहब, इमरान ने कहा। कुछ नहीं, मैंने और रेडो ने नाश्ता कर लिया है, हमें बाहर की सिक्योरिटी संभालनी है और नाश्ते के बाद हम यहाँ नहीं बैठते, आओ रेडो, गमाटा ने कहा। तो रेडो इस बात में सर हिलाकर उठकर खड़ा हो गया। चुपचाप बैठ जाओ दोनों, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, इमरान ने अचानक इंतहाई करप्ट और सख्त लहजे में कहा। तो वो दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन लेकिन, गमाटा ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। नवाब साहब, आप इनसे कहें कि ये खामोशी से बैठ जाएं, वरना इनके लिए वाकई अच्छा नहीं होगा, इमरान ने नवाब शुजात अली खान से कहा। तो नवाब शुजात अली खान ने उन्हें इशारे से बैठने का कहा। उन दोनों ने परेशानी के आलम में एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों साथ साथ बैठ गए। अब बताओ इमरान बेटा, कौन है वो साजिशी इंसान जो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है और जिसने मेरे बेटे जैसे भांजे अबुल हसन को कत्ल किया है, नवाब शुजात अली खान ने बड़े बेताबाना लहजे में कहा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप अपने साथियों के साथ पोजीशन संभाल लें, मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ हो, इमरान ने इंस्पेक्टर शफीक से मुखातिब होकर कहा। तो इंस्पेक्टर शफीक ने इस बात में सर हिलाया और अपने साथियों के साथ उठ खड़ा हुआ और फिर उसने अपने हॉलिस्टर से सर्विस रिवॉल्वर निकाला और नवाब शुजात अली खान के पीछे आकर खड़ा हो गया। सब इंस्पेक्टर अरशद अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालकर नूर बानो के पीछे आ गया, जबकि कांस्टेबल राठौर, गमाटा, रेडो और सलीम के पीछे आकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बंदूकें उन पर तान ली। ये सब देखकर नवाब शुजात अली खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। ये सब क्या हो रहा है इमरान, नवाब शुजात अली खान ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। नूर बानो, राठौर, गमाटा और रेडो के चेहरों पर भी हैरत के साथ गुस्सा उभर आया था और वो सब अपने पीछे मुसल्ला पुलिस और इमरान को देख रहे थे। हौसला करें, ये सब आपकी हिफाजत के लिए आए हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इन्होंने हम पर गने तान रखी हैं और तुम कह रहे हो कि ये हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, नॉनसेंस, नवाब शुजात अली खान ने इसी अंदाज में कहा। वाकई इमरान, ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, सर सुल्तान ने परेशानी के आलम में कहा। अभी सब समझ आ जाएगा जनाब, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इस वक्त हमारे महल में हैं इमरान साहब, क्या आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, नूरबानो ने इमरान को तेज नजरों से घूरते हुए कहा। जी हाँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ खूब सोच समझ कर कर रहा हूँ और खूब छान फटक करके कर रहा हूँ और जल्द ही आप सब पर मैं ये साबित भी कर दूंगा कि मैंने जो कुछ किया है गलत नहीं किया, इमरान ने कहा। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो, नवाब शुजात अली खान ने गुस्से लहजे में कहा। आपके खिलाफ साजिश करने वाले अनासिर को सामने लाना चाहता हूँ और भला मैं क्या करूंगा, इमरान ने कहा। इस तरह तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे खिलाफ साजिश करने वाले यहाँ हैं इसी मेज पर, नवाब शुजात अली खान ने भड़कते हुए कहा। जी हाँ, सब के सब यही हैं, अलबत्ता उनके चंद दस्ते रास्ते बाहर हैं जिनके बारे में ये खुद ही बता देंगे, इमरान ने कहा। कौन है वो लोग जो मेरी जान के दुश्मन हैं और जिन्होंने अबुल हसन को हलाक किया है, नवाब शुजात अली खान ने बुरी तरह से सर झटकते हुए कहा। सबके नाम बताऊं या सिर्फ एक का, इमरान ने कहा। सबके बताओ, नवाब शुजात अली खान ने कहा। नहीं, पहले एक का नाम सुन लें, फिर आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर बाकी सब के नाम भी आपके सामने बेनकाब हो जाएंगे, इमरान ने कहा। ठीक है ठीक है, एक का ही बता दो, नवाब शुजात अली खान ने उसी तरह गुस्तीले और झल्लाए हुए लहजे में कहा। पार्ट नंबर 5 यहाँ मुकम्मल होता है।